ओम शांति। आप सभी ने बहुत सुंदर अभी का सेशन सुना और मैं समझती हूं कि रिफ्रेश तो हो ही गए होंगे, है ना। सुबह से लेकर के आप सुनते आए हैं, कहीं ओवरडोज तो नहीं हो रहा है। अच्छा, जो था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, क्योंकि वैसे वकीलों को बोलने की आदत है, सुनने की नहीं है, है ना। और यहाँ सुनना पड़ रहा है, बोलना कम हो रहा है, तो कभी कभी बोलने वाले को अगर सुनने के लिए बिठा दिया जाए तो एक सजा लगती है। हाँ, जजों को तो सुनने की आदत है, लेकिन वकीलों को सुनने की आदत कम होती है। तो इसीलिए पूछा कि आप एंजॉय कर रहे हो ना, आनंद में हैं सभी, सफल हो रहा है अपना समय। हाँ, जैसे कहते हैं ना, समय स्वास संकल्प सफल हो रहे हैं तो खुशी होती है। तो इस प्रकार से अब आते हैं अभी अपने गीता के अध्यायों पर। तो कल तक हमने आठवीं अध्याय की बातें सुनी कि जिसमें परमात्मा ने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, अनादि हूँ, सभी का नियंता हूँ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूँ, सभी का आधार मूरत हूँ, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूँ। और साथ ही साथ अपने परमधाम का भी परिचय दिया कि परमधाम एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है जो ये पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ, अविनाशी और सबसे परे हैं। वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान होता। और उसके बाद इस संसार से जाने के दो मार्ग स्पष्ट किए, एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का मार्ग। जाना सबको है, आज नहीं तो कल, लेकिन किस तरह से हम जाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। तो प्रकाश के मार्ग से जो आत्माएं जाती है वो ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि निरंतर जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो। ऐसे व्यक्तित्व जिसने अपना बनाया है वो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं। आगे नौवे अध्याय के अंदर राज विद्या गुह्य योग, जिसमें भगवान कुछ गुह्य ते गुह्य बातें हम सभी को समझाना चाहते हैं और अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। यानी यह आध्यात्मिक ज्ञान भी एक साइंस है, तो इस साइंस को समझना जरूरी है। कहीं पर भी कोई अंधश्रद्धा की बात भगवान ने अर्जुन को नहीं की, लेकिन हर बात को एक स्पष्ट रीति से, साइंटिफिक रीति से कहना चाहा, तो कहा ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, गोपनीय रहस्य से भी अधिक गोपनीय है। इतना सीक्रेट्स है उसमें कि जो अगर कोई समझे इन सीक्रेट्स को तो जीवन जीने की कला उसमें आ जाए। ये परम पवित्र ज्ञान है और चूंकि ये स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, एक रिक्वेस्ट तो हरेक के तरफ से मैं कर रही हूं कि किसी का भी मोबाइल्स अगर स्विच ऑन है, क्योंकि जब ऐसे ही बातें सुन रहे हैं और उस समय मोबाइल्स बजते हैं, साइलेंट मोड पर आप रख लीजिए ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। तो ये परम पवित्र ज्ञान है और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसलिए यह धर्म का भी आदर्श है। इतना उत्तम ये ज्ञान भगवान देते हैं। यह स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है, इसीलिए इसको धारण करना चाहिए, क्योंकि उससे श्रेष्ठ ज्ञान इस संसार के अंदर और कोई नहीं है। फिर भगवान अपने संसार में कार्य करने की प्रणाली बताते हैं कि मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, मुझे व्यक्त स्वरूप नहीं है, और मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है, मनुष्य के जैसे मैं कार्य नहीं करता हूं। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं वे मेरे भीतर नहीं है, मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूं, लेकिन ये कर्म मुझे बांधते नहीं है क्योंकि मेरी उनमें आसक्ति नहीं है। बंधन तभी क्रिएट होता है जब आसक्ति होती है, और मैं तटस्थ व निरपेक्ष हूं। मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं। सृष्टि की रचना का स्रोत भी है, लेकिन सब पदार्थ भगवान कहते मेरे अंदर नहीं है। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं, और इस तरह यह संसार चक्र घूमता रहता है। ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से की गई है, वो गुह्य गोपनीय ज्ञान भगवान इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य में, अब यहां क्लियर भगवान करते हैं कि मैं किसी देवता के रूप में नहीं आता हूं, जब मैं मनुष्य में अवतरित होता तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि वे मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। तब अर्जुन दोबारा ये प्रश्न करता है, पहले तीन बार कर चुका है, फिर वापस करता है, माना इससे सिद्ध होता है कि अभी तक अर्जुन को भी क्लैरिटी नहीं हुई है, इसीलिए बार बार ये वही सवाल दोहरा रहा है। तो कौन जानता है भगवान को, कौन जान सकता है? अब जब कहा मनुष्य तन में अवतरित होता है, तो इसका मतलब श्री कृष्ण के तन में तो अवतरित नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण का जो साधारण नर स्वरूप है, मनुष्य रूप है, उस मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान से वो प्रश्न पूछता है, तो कौन जानते हैं? तो भगवान कहते हैं, जो मोह मुक्त दैवी संस्कार से जीने वाले हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं, वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योगयुक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो परमात्मा ने यह स्पष्ट कह दिया कि मैं, मेरी कार्य प्रणाली, पहले अपनी कार्य प्रणाली बताई और कार्य प्रणाली के साथ कहा कि मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला समझते, पहले ही अध्याय में बता दिया, सातवें अध्याय में, कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान करके मुझे संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। और फिर नौवें अध्याय में पुनः कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मोह माया में फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं जानते हैं। फिर आगे भगवान कहते, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, यानी भगवान को जानना है तो ज्ञान के दिव्य चक्षु जब खुलते हैं तभी उसको जान पाते हैं, तब तक नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते हैं और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं, समझ लेते भगवान देवता है, इसीलिए अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूछते हैं, यही समझ करके परमात्मा है, ये समझ करके उन देवताओं को पूजते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, फिर भी भगवान को याद तो किया, अज्ञानता है फिर भी याद किया, तो उसका भी फल मिल जाता है कि वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जाते हैं। यहां एक कर्मों की गुह्य गति भगवान ने बहुत सुंदर बताई है, क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग जब आएगा तो तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल होगा, भूत प्रेतों की पूजा लोग करेंगे, उसका आवाहन करेंगे और उससे कई कार्य सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, तो उसकी गति क्या होगी, वो कर्म की गुह्य गति यहां बताई है कि वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। यानी जैसे उनको वश, उन्होंने किसी को वश करके अपने कार्य को सिद्ध किया, माना उनके क्लचेज में वो आ गए वो आत्माएं, तो उनकी गति भी वही होनी है। इसीलिए भगवान यही कहना चाहते हैं कि कितना भी समय कैसा भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी तांत्रिक विद्या को अपनाना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं हम खुद नहीं करते हैं, कराते हैं। अब करते हैं या कराते हैं, लेकिन उसकी गति तो वही होनी है क्योंकि वो उनके साथ जुड़ गए हैं। तो ये एक बहुत गुह्य गति समझाई है, और ये भगवान ने इसीलिए कहा, मैं गुह्यते गुह्य गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा। तो यहां ये गुह्य गति भी समझाई कि जब देवताओं को परमात्मा समझकर पूजते हैं तो भी उसका फल के देवताओं के बीच में जन्म मिलता है। तो कहां जाना चाहते, देवताओं के बीच में जाना चाहते, पितरों के बीच में जाना चाहते, या भूत प्रेत की योनि में जाना चाहते, कहां जाना चाहते, ये हमें डिसाइड करना है ना, ये हमें डिसाइड करना है कि हम कहां जाना चाहते हैं। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है। भगवान कभी किसी के लिए पक्षपात नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है, न किसी से द्वेष है न पक्षपात है, किंतु जो मेरे अनन्य भाव से सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं उनका मित्र हूं। ये भी एक प्रकार का भगवान का प्रॉमिस है कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन ईश्वर का प्यार प्राप्त करना है तो विधि भी भगवान बता देते हैं कि मेरे से मित्रता भाव जोड़ो, और अगर मेरे मित्र बन जाओगे तो कहना ही क्या, फिर तो भगवान संबंध निभाने में भी बड़ी वफादारी रखते हैं। इंसान वफादारी से संबंध नहीं निभा सकता है, लेकिन एक भगवान ऐसा है उसके साथ जिसने जो संबंध जोड़ा वफादारी से निभाया, चाहे किसी ने उसको मित्र रूप में देखा है ना, नरसिंह मेहता ने, अर्जुन ने मित्रता भाव रखा तो मित्रता का संबंध निभाया, मीरा ने प्रियतम के रूप में देखा तो प्रियतम बन गए है ना, सती अनसुया ने उसको बच्चे रूप में देखा तो बच्चा बन गए, प्रहलाद ने उसको मात पिता के रूप में देखा तो मात पिता बन गए। तो जिसने जिस संबंध से भी उसको याद किया, तो इसीलिए भगवान कहता है कि वह मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र। इसीलिए दुनिया में खुदा दोस्त की कहानियां बहुत है कि खुदा जिसका दोस्त बन जाए उसका तो कहना ही क्या। एक कहानी मुझे याद आती है खुदा दोस्त की, कि एक बार एक बंदे की दोस्ती खुदा से हो गई और काफी समय चलता रहा दोनों की दोस्ती। एक दिन बंदे ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, आप स्वर्ग के मालिक हो, कभी मुझे भी स्वर्ग का सुख क्या होता है वो अनुभव कराओ ना। भगवान ने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहता मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग का सुख क्या होता है ये अनुभव करना है, और मैं जानता हूं कि आप मुझे करा सकते हैं। भगवान भी मुस्कुराए और कहा ठीक है, स्वर्ग का सुख अनुभव कराता हूं। कितना दिन सुख अनुभव करना चाहते हो? बंदे ने कहा 10 दिन बहुत हो गया, 10 दिन मुझे स्वर्ग का सुख का अनुभव कराओ। भगवान ने कहा ठीक है, आज से तू स्वर्ग को में चला जा और स्वर्ग का सुख क्या होता है ये अनुभव कर। उसको भेज दिया। पहले दिन ही बंदे ने देखा क्या सुख है ये तो, और 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अब उसको मन में आया 10 दिन तो बहुत कम मैंने कह दिया, और ज्यादा कहना चाहिए था, लेकिन स्वर्ग में तो सब कार्य फटाफट होते हैं। उसने क्या किया, 10 दिन के अंदर अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया, और 10 दिन के बाद भगवान को राजाई वापस दे दी। भगवान ने जब देखा कि ये बंदे ने अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया है तो हंसने लगे कि इस बंदे ने मुझे भी नहीं छोड़ा। गुस्सा नहीं आया, लेकिन भगवान ने सोचा चलो अब बराबर की दोस्ती तो हो गई। ये है भगवान की दोस्ती, कि भगवान को किसी बात में गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कहा चलो अब बराबर की दोस्ती हो गई। भावार्थ ये कि भगवान के साथ दोस्ती जोड़ करके देखो उसमें भी कितनी प्राप्ति है ना। इसीलिए भगवान कहते कि जो अत्यंत दुराचारी है दुनिया के अंदर पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है और सेवा करने लग जाता है वह साधु मानने योग्य है और वह परम शांति को प्राप्त करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण योगियों राजऋषियों का तो कहना ही क्या। अगर अत्यंत दुराचारी भी रियलाइजेशन प्राप्त कर ले और परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले स्वार्थ से नहीं, लेकिन अनन्य भाव से फिर उसकी शरण ग्रहण कर ले, यानी एक रियल अंदर के प्यार से, दिल के प्यार से, अनन्य भाव को लेकर के अगर शरण ग्रहण कर लेता है तो वो साधु मानने योग्य होता है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन, मन मना भव मध्याजी भव, तो मन को मेरे में लगाओ। मन को अगर मेरे में लगाएंगे तो मध्याजी भव, मध्य में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के मध्य में कौन है? विष्णु है। यानी तो विष्णुपुरी में जाने के योग्य बन जाएंगे। तो मन मना भव होगा तो मध्याजी भव, कि विष्णु लोक में तुम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। ये भावार्थ है यहां पर, मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि मन अगर ऐसे नहीं लगता है तो कोई मंत्र जाप करे तो चलता है कि नहीं चलता है? मंत्र क्या चीज है? मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार। तो मंत्र माना सलाह। इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस गिवन टू द माइंड कि तुम ईश्वर में लगने के लिए ये फ्रेज को जपते जाओ। जैसे कई लोग मंत्र दे देते हैं मिसाल के रूप में ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय मंत्र मिल गया कि जपते रहो ये, ताकि मन को त्राण मिले। त्राण मीन्स प्रोटेक्शन। मन को त्राण देने वाला शब्द उसको कहते हैं मंत्र। त्राण यानी प्रोटेक्शन, के भटकने से उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसीलिए ये फ्रेज रटने के लिए या जपने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये कहां तक उपयोगी होता है? ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। अगर हर रोज एक ही प्रकार की सब्जी रोटी दी जाए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, क्या करेंगे? दो चार दिन, दस बारह दिन, पंद्रह दिन खा लेंगे। पंद्रह दिन के बाद तो पूछेंगे, भाई आखिर यही मिलना है या और कुछ भी मिलेगा? अब मानो बनाने वाले ने कह दिया ये आपकी फेवरेट डिश है, इसलिए जिंदगी भर तीनों टाइम आपको यही मिलना है। अब उसके साथ बहस करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने एडमिट कर लिया कि मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मैंने यही सीख लिया, अब जीवन भर यही खा। अब वही जीवन भर तो खा नहीं सकते हैं, तो फिर दूसरे दिन से क्या करेंगे? बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी कोई होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहां खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए, कभी और कुछ नहीं मिला तो वो बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल्स लगे होते वहीं खा के आ गए। घर में आके कहेंगे हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, वो कितना दिन खाएगा? आखिर वो भी तो इंसान है, उब जाएगा। बाजार में जाकर एक रेसिपी बुक ला करके, या आजकल के जैसे टीवी में वो प्रोग्राम आता है खाना बनाने का, तो वो देख देख करके उसमें से चीज सीख सीख करके फिर बनाना शुरू किया। और शुरू करके फिर आप जब शाम को घर आए तो आपको सर्व किया गया। खाने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा? नहीं, खाने के बाद आप ये कहेंगे बाहर जैसा टेस्ट नहीं है, कुछ तो कम है इसमें। पता नहीं क्या कम है, लेकिन कुछ तो कम है। अब बाहर में टेस्ट में एक्स्ट्रा चीज कौन सी थी? यही पसीना था एक्स्ट्रा में तो, है ना, जो घर के टेस्ट में नहीं था, बाहर में तो वही एक्स्ट्रा थी। घर में इतनी स्वच्छता के साथ बनाया गया, हाइजेनिकली स्वच्छता सब मेंटेन करते हुए, फिर भी वो अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर का टेस्ट जिह्वा पर चढ़ गया। इसलिए ठीक इसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन। अब रोज उसको भी एक ही प्रकार का चिंतन दिया जाए, ओम नमः शिवाय जपो। अब कितना दिन जपेंगे? महीना दो महीना तो मन जप लेता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ा आनंद भी आ रहा है। आखिर जब महीना दो महीना हो गया तो मन आत्मा से पूछता है, अरे भाई आत्मा, और कुछ मिलेगा या यही है? है ना, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज हाइपर क्रिएटिव, उसको नए नए विचार चाहिए। वो वही विचार चलाते रहने से तो ऊब ही जाना है, तो इसलिए वो पूछता है और कुछ मिलेगा या यही है। तो आत्मा ने कह दिया ये तो गुरु मंत्र है, अब जिंदगी भर जब टाइम मिले तुमको यही खाना है। अब मन ने समझ लिया कि आत्मा के साथ बहस करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो मन क्या करता है? मन मुख को कहता है, मुख तू बोलता जा, मैं थोड़ा घूम के आता। इसलिए मुख बोलता रहते, हाथ में माला होगी, मुख बोलता जाएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही है, दूध उबल रहा है, वो बिल्ली आई, कुत्ता आया। अब ऐसा मंत्र जाप करने का कोई फायदा है? कोई फायदा? राजयोग में भगवान यही कहते हैं कि ये सारा ज्ञान ही मंत्र है। हर रोज अलग अलग, चिंतन दो अपने मन को, और जितना उसको अच्छे से अच्छा चिंतन मिलता जाएगा मन प्रफुल्लित होगा। अब आप यहां 4-4:30 बजे से आकर के बैठे हैं ना, ऊब तो नहीं गए ना। अगर मैं यहां बैठ के कोई पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, फालतू बातें सुनाती थी तो क्या करते थे आप? एक एक धीरे धीरे उठ करके, हाँ भाई मोबाइल भी बजता रहता है, उस बहाने से भी कान पर लगा करके निकल जाते थे, है ना, यहां बैठते नहीं थे। लेकिन एक वैरायटी चिंतन मिल रहा है और मन को आनंद आ रहा है उसमें। तो किसी का मोबाइल बजते तो मैं सबका चेहरा यहां से देखती हूं, एक एक को क्या इशारा करते हैं, है ना, ये कहां से बज गया है ये बीच में, यानी वो भी अच्छा नहीं लग रहा है और मन कहीं बाहर जा रहा है। कुछ याद आ रहा है, किसको फोन करना है, किसको कुछ कहना है याद आ रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि मन को इतना हेल्दी भोजन मिल रहा है, इतना हेल्दी नरिशमेंट मिल रहा है, तो लगता है कि और खाते जाए और स्वीकार करते जाए और उसको हजम करने की कैपेसिटी हम अपनी क्रिएट कर लेंगे। तभी मैंने पहले पूछा, ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, सुबह से सुन रहे हैं। वहां तक कि हमारा अनुभव यही है कि जो भी ऐसे ग्रुप्स आते हैं, लिख करके जाते हैं कि टेक्निकल सेशंस कम करके ये सेशंस ज्यादा रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, कि भाई वो बातें तो हम वहां भी सुनते हैं और यहां भी अगर वही सुनना तो क्या फायदा हुआ, तो वो नहीं पसंद आता है, सोचते नहीं ऐसे कोई सेशंस रखे जाए तो अच्छा लगेगा। भावार्थ ये कि मन को क्या अच्छा लगा, समझो अपने मन को, कि मन को आध्यात्मिक चिंतन ही पसंद आया है, मन को टेक्निकल सेशंस पसंद नहीं आए। तो आप अपने मन को ये आध्यात्मिक चिंतन जो उसको पसंद आ रहा है वो उसको क्यों नहीं दे रहे हो? वहां जाकर के भी हर रोज कम से कम थोड़ा तो आध्यात्मिक नरिशमेंट उसको दो, उसी को ही मंत्र समझ करके दो, फिर देखो सारा दिन मन कितना प्रफुल्लित रहता है, कितना प्रसन्न रहता है। और फिर आगे 10वें अध्याय में विभूति विस्तार योग, असीम सत्य की अपार महिमा, बल सौंदर्य ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक की हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमात्मा की दैवी शक्ति और एवं ऐश्वर्य के आशंक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। और इस तरह से भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ना ही देवता ना ही महर्षिगण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं, ना देवता जानते न महर्षिगण जानते हैं, मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। बार बार भगवान ये बात अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान रहा है? क्योंकि अभी तक अर्जुन खुद भी नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए बार बार ये चीज अलग अलग रूप से भगवान को दोहरानी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक वो श्री कृष्ण को ही देख रहा है जो उसका मित्र है। लेकिन तभी भगवान उसको रियलाइज कराने के लिए उसकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसको रियलाइजेशन देने के लिए ये कहते हैं कि मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को ज्ञान के माध्यम से ही जान सकते हैं, ज्ञानवान ही जान सकते हैं, जो मोह माया में लिपटे हुए हैं वो मुझे नहीं जान सकते, न देवता जान सकते न महर्षिगण जान सकते हैं। मनुष्य आत्मा में, और भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है, जो अच्छे गुण है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए हैं, जो मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं। थॉट एनर्जी का ना साइंटिफिक सुनाता हूं मैं, साइंस बताता, सूक्ष्म साइंस क्या है कि जो ईश्वर ने थॉट एनर्जी के माध्यम से दिया गया है, टेलीपैथिक कनेक्शन के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रह जाता है। भगवान को ज्ञान के आधार से ही जानना, बार बार ये कह रहा है, ये चरम चक्षु से देखने वाली बात नहीं है। कोई सोचे कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मुझे दिखाई दे तब मैं मानूं, नहीं, ये ज्ञान के माध्यम से ही समझने वाली बात है, चरम चक्षु द्वारा देख करके समझने की बात नहीं है। फिर भगवान आगे कहते, जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं कि उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्मभाव में स्थित करता हूं। यही परमात्मा की कृपा है। भगवान कृपा कैसी करता है, ये नहीं कि अच्छा तुम्हें हम धनवान भव, पुत्रवान भव, ये कृपा नहीं। भगवान कहते मेरी विशेष कृपा ही यह है कि अज्ञानता के अंधकार के कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्मभाव में स्थित कर देता हूं। जब आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, उतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसको सब कुछ प्राप्त, जो सोचता है वो मिल जाता है, उसको कुछ प्राप्त करने की मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, है ना। तब अर्जुन अब समझा, तो अर्जुन अब क्या कहता है भगवान को कि हे प्रभु, आप परम धाम के वासी हो, ये मैंने समझ लिया, परम पवित्र परम सत्य हो, आप अजन्मा हो, अब समझा उसने, आप अजन्मा हो, सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो, महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न ही असुर समझ सकते हैं, आप देवों के भी देव हो, त्रिलोकी नाथ हो। कृपा करके अब भगवान से वो कहते हैं, कितना नम्रता से निवेदन करता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं, आपका स्मरण करूं, ये बताए। तो ये बताने की एक प्रार्थना की है। तब अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। जो स्वरूप वो देख रहा था वो तो साधारण था, अजन्मा को इस चरम चक्षु से तो देखा नहीं जा सकता है, अब उसको समझना चाहता है। तो भगवान कहते मेरा ऐश्वर्य असीम है, मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों की जो सर्वोच्च स्थिति होती है, पहले भी कहा बल ऐश्वर्य सौंदर्य की उत्कृष्टता चाहे इस जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो उसके साथ उनकी तुलना की जा रही है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य असीम है। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि मनुष्य बुद्धि उस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए भगवान एक एक करके 81 श्रेणियों में जो सर्वोच्च स्थिति है होती है उसका वर्णन अपने स्वरूप की असीम विशेषताओं के साथ करते हैं। तो लोगों ने अज्ञानता से समझ लिया उन सब में भगवान है। जब पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं परमधाम का वासी हूं, मेरी कार्य प्रणाली कैसी है वो भी पहले से ही स्पष्ट कर दिया, फिर भगवान सब में कैसे हो सकते हैं। लेकिन कहा ना, कई बार मनुष्य उस बात को ग्रहण नहीं कर पाता है, तब अभी 81 श्रेणी की बात समझाता है भगवान, उसकी उत्कृष्टता जो होती है सर्वोच्च स्थिति, उसकी अपनी विशेषता, अपने ऐश्वर्य के साथ, असीम ऐश्वर्य के साथ उसकी तुलना की गई है। तो स्वरूप की तुलना करते पहले कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, सूर्य में परमात्मा हूं ये नहीं कहा, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, लेकिन कोई दहकता हुआ नहीं है। तब कहा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह शीतल हूं, समस्त पर्वतों में मेरु सर्वोच्च हस्ती है वो, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति ज्ञानी है, समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय शक्तिशाली है, समस्त जलाशयों में समुद्र अनंत है अपनी महिमा में, महर्षियों में भृगु और वाणी में दिव्य ओमकार, इतनी मधुर ईश्वर की वाणी है, समस्त अचलों में हिमालय, यानी इतने श्रेष्ठ और अचल है सिद्ध शिलापति, समस्त वृक्षों में पीपल, पीपल क्यों कहा, और कोई वृक्ष का नाम न लेकर के पीपल क्यों कहा, लोगों ने इसीलिए पीपल की पूजा शुरू कर दी, समुद्र की पूजा शुरू कर दी, हिमालय की पूजा शुरू कर दी, सूर्य की पूजा शुरू, क्योंकि अज्ञानता कि भगवान ने जो कहना चाहा उस भाव को समझ नहीं पाए। पीपल क्यों कहा, क्योंकि साइंस ये कहता है, एग्रीकल्चर साइंस ये कहता है कि एक पीपल और एक तुलसी, ये दो वृक्ष ऐसे हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पीपल जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, दूसरा कोई वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं देता है, अर्थात प्राणवायु जिससे हमारा जीवन चले। तो भगवान यही कहते कि समस्त वृक्षों में पीपल, यानी ईश्वर भी इंसान को निरंतर प्राणवायु देता है, एनर्जी देता है। और इसीलिए शायद ऋषि मुनियों ने पीपल को पूजने के लिए, ताकि वो वृक्ष को लोग काटे नहीं, जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा हो वो वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, इसलिए तुलसी की भी पूजा करना शुरू करवा दिया और पीपल की भी पूजा करना शुरू कर दिया, ताकि एक अंधश्रद्धा के माध्यम से भी लोग बंधे रहे और उसको काटे नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल, निरंतर प्राण वायु भगवान देते हैं, सिद्ध पुरुषों में कपिल, परमात्मा सिद्ध है, सिद्ध स्वरूप है, गजराजों में ऐरावत, कहा ना चाहे इस जगत की हो चाहे आध्यात्मिक जगत की हो उसके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। और मनुष्य में राजा सर्वश्रेष्ठ हस्ती, हथियारों में व्रज इतना शक्तिशाली भी है, गायों में सुरभि सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, दैत्य राज दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद, इतना जिनका मन निर्मल हो, पशुओं में सिंह शक्तिशाली और पक्षियों में गरुड़, शस्त्रधारियों में राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। नदियों में गंगा परम पवित्र है, समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या सर्वोच्च, ज्ञान का सागर है परमात्मा, समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु निरंतर। ये गुण उनके जीवन से, उनके परमात्मा से निरंतर प्रवाहित होते हैं। समस्त मुनियों में व्यास, समस्त सृष्टि का बीज रूप हूं, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं। भावार्थ भगवान का ये है कि ये दुनिया की चाहे 81 बातें भी ले ली, जिसके साथ अपने विशेषताओं की तुलना की, फिर भी उसका अंत नहीं। सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां वह सिर्फ मेरे स्वरूप का एक अंश समान है। परमात्मा के अंश नहीं है ये सभी, लेकिन ये विभूतियां जो है ये ईश्वर की महिमा को सिर्फ एक अंश मात्र स्पष्ट कर पाती है। इतना स्पष्ट करने के बाद भी वो परमात्मा के दिव्य स्वरूप का पूर्ण रीति से स्पष्टता नहीं कर पाती है। तब फिर 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराते हैं, भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्वरूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। अब अर्जुन की एक प्रार्थना है, जब इतनी सुंदर बातें उसने सुनी भगवान के मुख से अपने स्वरूप के बारे में, तो अब उसके अंदर जिज्ञासा हो गई कि मैं उस स्वरूप को देखूं कि वो स्वरूप कैसा होगा, कि 81 श्रेणियों का वर्णन करने के बाद भी अगर ईश्वर की तुलना उससे नहीं हो पाती है तो वो स्वरूप कैसा होगा, वो स्वरूप मैं देखना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया उससे मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है, और इसलिए यदि, कितनी विनम्रता है, इसलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। भावार्थ ये है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। तो जैसे अर्जुन को मिली बौद्धिक क्षमता, आप सबको मिली हा? तो अब भगवान उसको दिव्य चक्षु देते हैं जिससे अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। और सबसे पहले जो स्वरूप का दर्शन कराया, संजय उसका वर्णन करते, क्योंकि ये स्वरूप को सिर्फ 4 लोगों ने देखा, अर्जुन ने देखा, वेदव्यास जी ने देखा, संजय ने देखा और भीष्म पितामह ने देखा। कहा जाता है ये 4 लोगों ने उस स्वरूप को देखा। तो संजय उसका वर्णन करता है और वर्णन करके धृतराष्ट्र को सुनाता है कि आकाश में 1,000,000 सूर्य उदय होने जितना प्रकाश होता है वो उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा, और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखाया और उसके बाद श्री कृष्ण का स्वरूप विराट रूप दिखाया जिसमें अनेकों चेहरे, और ये चेहरे किस चीज का, कि श्री कृष्ण ने जो पुनर्जन्म लिए हैं हर बार अलग अलग समय पर, तो हर जन्म का वो जो चेहरा है वो उस विराट रूप में दर्शन कराया। तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा निराकार है, तेजोमय है, सूर्य के समान है, प्रकाशमान है, और श्री कृष्ण के कितने पुनर्जन्म है। ये दोनों स्वरूप एक साथ दिखाए और इस रीति से उसका अज्ञान दूर किया कि सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे। फिर भगवान से वो कहता है, आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त हो। भगवान आदि मध्य अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त है और श्री कृष्ण आदि मध्य अंत में पुनर्जन्म लेने वाले शंख चक्र गदा पद्म युक्त सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज हो। आप सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप को अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। आप इस जगत के परम आश्रय है, आप सनातन धर्म के रक्षक है, परमात्मा को वो कह रहा है। ये स्वरूप, दोनों स्वरूप जब देखा, परमात्मा का स्वरूप और श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म वाला स्वरूप, वो दोनों स्वरूप को देखा। आप लोगों ने भी ये देखा होगा या समझा होगा गीता पढ़ते समय कि एक चेहरा उसमें एक ऐसा आता है कि जहां से आत्माएं जा रही है उनके मुख में जाती है और दूसरी ओर देवता बन करके एक एक देवता नीचे उतर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपने एक चेहरा देखा होगा, एक चेहरा जहां से सारे आत्माएं खींचे जा रहे थे और दूसरा एक चेहरा दूसरी ओर जहां से देवता बन करके नीचे उतर रहे थे। तो इस तरह जब स्वरूप देखता है तो अर्जुन कहता है, इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन हो, क्योंकि जिस चेहरे से वो जा रहे थे, है ना, खास आप लोग ने अगर महाभारत की वो सीरियल देखी हो तो उसमें ये स्पष्ट दिखाया है कि एक ओर से जा रहे हैं और दूसरी ओर से देवता बनकर के निकल रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि आप कौन हो, मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन हो, क्योंकि वो चेहरा जो दिखाया एक साधारण मनुष्य का चेहरा दिखाया है। तो वो आदि पुरुष कौन हो, मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं, मैं लोकों को नाश करने वाला महाकाल हूं, इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। भावार्थ ये मारने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये महाकाल के द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो तुम्हारा जो मोह है उस मोह को तुम नष्ट कर दो, तुम निमित्त बन जाओ, अपने आप को निमित्त समझो। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं ये समझो, ये मेरे हैं, तेरा कोई नहीं है, तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। कहा ना वो माँ बाप बच्चे को क्या कहते हैं, अरे मारो गोली, तुम उसके साथ क्यों खेलने जाते हो। तो भगवान भी उसको कहते हैं, ये तो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, लेकिन जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, उसको नष्ट करो और तुम निमित्त बन जाओ, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझो, माध्यम समझो। फिर भगवान ने एक और गुही ये बात यहां समझाई कि इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य परमात्मा का क्या है, कि समस्त नकारात्मक शक्तियों को नाश करना है। किसी व्यक्ति को नाश करने की बात नहीं है, नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने की बात है। अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना भी अधिक क्यों न हो, लोक शैकारी महाकाल की शक्ति ने पहले से ही उनको मार दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव ही है, इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुनर्निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल समर्थ है। इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे, मोह माया में उलझकर अपने जीवन को नष्ट न करे, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करे, पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का ही केवल एक साथ दे रहा है। तो हमें क्या करना है? सफलता को साथ देना है, पुनर्निर्माण के कार्य के लिए साथ देना है, या विनाश का, महाकाल के द्वारा जो विनाश होना है उसका हिस्सा बनना है? इसीलिए कहावत है दुनिया में भी, आइदर यू आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आइदर यू आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। या तो आप समस्या स्वरूप हो या आप समाधान स्वरूप हो, क्या बनना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहते हैं या डिस्ट्रक्शन की ओर जाना चाहते हैं? ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस ओर जाना है। और अगर कंस्ट्रक्शन की ओर, पुनर्निर्माण की ओर, तो हम ईश्वर के साथी बन जाते हैं। और जब ईश्वर के साथी खुदाए खिदमतगार बन जाते हैं तो उसका भी एवज ईश्वर दे देता है, वो कभी किसी का रखता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता कि ईश्वर का साथ देना यानी सफलता को साथ देना है। तब अर्जुन बहुत सुंदर रीति से, अब जब रियलाइजेशन हो गया तो कैसे क्षमा मांग रहा है। किस बात की क्षमा? कि बार बार जो वो प्रश्न कर रहा था ना, कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है, कैसे नहीं जानता, ये जो सवाल उसका बार बार था, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ जब वो उस दिव्य स्वरूप को देखा। तो भगवान को वो कहता है, वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे न करें, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदिकर्ता हो, अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है, सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। परमात्मा से भी प्रकृति को भी और मनुष्य आत्मा को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय एवं सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकृति नहीं है। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब अर्जुन समझ गया, अब उसका यह सवाल नहीं है कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है। इसलिए हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानता के कारण जो सवाल बार बार आपको पूछा, मन क्यों वश में नहीं होता, मन कैसे वश में होऊंगा, आपको कौन जानता है कौन नहीं जानता है, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, ये सब जो सवाल किए, तो अब उसको अपनी गलती जैसे महसूस हो रही है कि मैं कितने फिजूल के सवाल कर रहा था। तो कहते हैं, ये मेरा अपराध है कि मैं किसको सवाल कर रहा था, भगवान को सवाल कर रहा था। तो ये इतना उसको डीप रियलाइजेशन होता है और इसीलिए वो क्षमा मांगता है। फिर भगवान कहते हैं, मेरा ये रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा, आप सबने देखा, आप सबने इस रूप को ज्ञान के चक्षु से देखा। देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता। मनुष्य कितना भी मंत्र जाप तप दान पुण्य यज्ञ वेद पढ़ ले, उससे मैं देखा नहीं जा सकता। गीता में ये बात स्पष्ट कर दी भगवान ने कि उससे मैं देखा नहीं जा सकता हूं। तब फिर भक्ति योग की बातें 12वें अध्याय में भगवान करते हैं। अर्जुन पूछता है कि भगवान, आपकी अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त की उपासना में लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भावार्थ ये है, साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? अब उसके सवाल बदल गए। जब निराकार स्वरूप को देखा और फिर देखा कि कैसे ये तो देवताओं की पूजा तो अज्ञानता के कारण लोग कर रहे थे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे थे। तो अब भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे प्रभु, निराकार की भक्ति श्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? ये सवाल आपके मन में भी होगा कि अब किसकी भक्ति करनी चाहिए। सुबह भी मैंने कहा ना, वाया वाया में तो नहीं अटके हुए, तो क्या करना चाहिए? डायरेक्ट कनेक्शन करें ना अभी। तो भगवान ने भी यही उत्तर दिया, मुझ में मन लगाकर। देखो कितना, जिसको कहे ना चतुर जवाब है, लेकिन उस चतुर जवाब में जो उत्तर समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वो समझ लेता है कि मुझ में मन लगाकर सदा योगयुक्त होकर के परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करता है वे मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। मेरी उपासना माना ये मेरा ध्यान करता है, वह मेरे मत में सबसे उत्तम है। और फिर आगे भगवान उसको क्लियर करते हैं, जो लोग अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रखकर उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह करके अनंतः मुझे प्राप्त करते हैं। उत्तर मिला किसका ध्यान करने लिए कहा? अव्यक्त स्वरूप का, जिसकी कोई व्यक्त आकृति नहीं है, उस व्यक्त अव्यक्त स्वरूप निराकार स्वरूप। परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए उनका देह अभिमान उनके पुरुषार्थ में और प्रगति में बाधा डालता है, विघ्न डालता है। जो कहते हैं ना भाई, ध्यान में तो बैठते हैं, यहां भी कल मुझे कई लोग कह रहे थे ध्यान में तो बैठते, लेकिन वो निराकार का ध्यान ही नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अपने को देह समझ करके बैठे हैं, मैं फलाना हूं ये समझ करके बैठे हैं, तो यही विघ्न रूप बनता है। उसके लिए देह को भूलना और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करना जरूरी है। जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर एक व्यक्ति अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आता है? बच्चे याद आएंगे। पति समझता है तो पत्नी की याद आएगी। खुद को बच्चा समझता है तो उसके माता पिता याद आएंगे। अपने को वकील समझता है तो अपने क्लाइंट याद आएंगे। तो आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा विघ्न जो पड़ता है ये ध्यान में, वो है अपना देह अभिमान, जो प्रगति करने नहीं देता है। सिंपल उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि अगर दो वायर का कनेक्शन करना है तो दोनों का ऊपर का इंसुलेशन उतारना पड़ता है। अगर एक का इंसुलेशन ऊपर का उतारा, दूसरे का नहीं उतारा और वायर कनेक्ट करो, करंट पास होगी? नहीं होगी। दोनों का ऊपर का रबर उतारा फिर वायर को जोड़ो तो करंट पास होंगे। ठीक इसी तरह ईश्वर को कोई भी आवरण नहीं है, निराकार है तो कोई भी आवरण, कोई भी इंसुलेशन है नहीं, उसका रबर तो उतरा हुआ है, लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए मन लगता नहीं है। इसके कॉन्शियसनेस में जितना रहेंगे तो वही देह की दुनिया याद आएंगी, दैहिक बातें याद आएंगी, देह के रिश्तेदार याद आएंगे, पदार्थ याद आएंगे, भौतिक चीज वस्तुएं, क्योंकि अपने आप में ये रबर चढ़ा हुआ है तो वो कनेक्शन होता नहीं, करंट पास होती नहीं है। इसलिए भारत में एक बहुत सुंदर प्रथा है जो इस बात को दर्शाती है कि आप मंदिर जब जाते हो ना तो क्या करते हैं, मंदिर के बाहर चमड़े की चीज को उतारने के लिए कहा जाता है। चमड़े का पर्स आदि भी होता है तो भी कहते हैं बाहर रख दो, है ना, वो चमड़े वाली चीज को अंदर लेके नहीं जाने देते हैं। चमड़े की चीज को बाहर उतारो, जूते चप्पल सब बाहर उतारो, फिर अंदर जाकर तिलक लगाते हैं, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई, लेकिन सोचा नहीं कि ये प्रथा क्यों है। चमड़े की चीज को तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा, ये भी तो चमड़ा है ना। जिस चमड़े का मनुष्य अभिमान करता है, ये अभिमान का चमड़ा उतारने की बात है कि मंदिर के बाहर भगवान के सामने जब जाओ तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो। हमने स्थूल में वो जूते चप्पल उतार दिए, लेकिन ये चमड़ा जिसका अभिमान करते हैं वो अभिमान का चमड़ा नहीं उतारा। तो उतारना है तो पहले अभिमान के चमड़े को बाहर उतारो, फिर अंदर जाके तिलक लगाया। तिलक लगाने का मतलब है कि मैं फलाना फलाना नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा, हे प्रभु मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा की कॉन्शियसनेस को विकसित करो, डेवलप करो, और उस कॉन्शियसनेस में स्टेबिलाइज होकर के फिर भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करो उस कॉन्शियसनेस, तो करंट पास होगी, तो ईश्वर से सर्व आशीर्वाद कृपा जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक प्रथा के रूप में ही करते आए तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। ये भी अनुभव कर लिया कि मनुष्य कितना भी मांगता रहता है भगवान के मंदिर में जाकर के, प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभिमान का चमड़ा उतारा ही नहीं, अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित किया ही नहीं, उस कॉन्शियसनेस में स्टेबिलाइज किया ही नहीं, तो भगवान से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। इसलिए कनेक्शन जुड़ा नहीं। तो इसीलिए भगवान ये भी बताता है कि निराकार की उपासना में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है, तो देह अभिमान ये सबसे बड़ा विघ्न डालता है जो प्रगति करने नहीं देता है। तो इसलिए अब जब भी ध्यान के लिए बैठो तो ये याद रखना कि मुझे अभिमान के चमड़े को उतारना है, मैं फलाना हूं फलाना हूं, ये कॉन्शियसनेस में नहीं बैठना है। लेकिन कौन से कॉन्शियसनेस को अपनाना है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इस कॉन्शियसनेस में बैठना है। और फिर भगवान कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो कम से कम पहले बात से तो शुरू करें, अभ्यास से तो शुरू करें। बॉटम लाइन पर क्या है, अभ्यास है। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान लगने में कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, एकदम थोड़ी लगेगा, अभ्यास करना पड़ेगा पहले तो। आज एक छोटे बच्चे को ये हाथ को प्रैक्टिस देनी होती है एबीसीडी लिखने के लिए, एबीसीडी खाली लिखाने कितना टाइम लगता है, वो चीज को अभ्यास कितना कराना पड़ता है, तब जाकर के एक साल के बाद उसको एबीसीडी लिखनी आती है। एक साल अभ्यास करना पड़ता है, उसमें तो जल्दी नहीं करते हैं ना। और अगर हाँ ये बच्चे को कंटाला आता है, नहीं लिखना है, या रोज रोज एबीसीडी लिखनी है, क्या रोज रोज एबीसीडी, लेकिन आप उसको छुड़वा देंगे, चलो छोड़ो कंटाला आता है छोड़ दो नहीं लिखो। अरे आपको पता है कि यही बेस है उसके जीवन का निर्माण करने के लिए। अगर ये बेस ही कच्चा रह गया तो जीवन में क्या कर पाएगा बच्चा। अरे आपको पता है कि यही बेस है उसके जीवन का निर्माण करने के लिए। अगर ये बेस ही कच्चा रह गया तो जीवन में क्या कर पाएगा बच्चा। इसलिए कितना भी उसको अगर कंटाला भी आता है तो भी क्या कहते हैं, अच्छा तेरे को चॉकलेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुम इतना होमवर्क कर लो, चलो इतनी बार लिख लो एबीसीडी। स्कूल में भी वही एबीसीडी, घर में होमवर्क के लिए भी वही एबीसीडी, तब जाकर के एक साल के बाद रोज अभ्यास कराते चलो, तब एक हाथ को एबीसीडी लिखना आता है। एक मन को ईश्वर में लगाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना अभ्यास करना पड़ेगा, एक साल नहीं। एक साल नहीं, क्यों? क्योंकि ये हाथ में बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा अभ्यास घुटाना पड़ता है, बार बार घुटा। लेकिन मन के साथ बुद्धि है, एक बार उसकी समझ में कोई बात आ जाए। कई बार कई लोग हमें कहते, बहन जी आपकी बातें इतनी अच्छी है लेकिन हमारी समझ में कम आती है। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए, एक बच्चे को भी जिस दिन पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ जाए, उस दिन के बाद परिवर्तन। अब यह देखना है कि आपकी बुद्धि इन बातों को कितना जल्दी समझ पाती है, उतना टाइम लगेगा। अब आप एनालाइज करो कि आपकी बुद्धि कितना समय ले सकती है समझने के लिए। कई लोग पूछते ध्यान लगने में कितना टाइम लगेगा, आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आपकी बुद्धि इस बात को कितना जल्दी समझ पाती है। जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन के बाद परिवर्तन, उसके बाद घुटाने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं। उसके लिए कोई जपना नहीं है कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, नहीं, लेकिन समझना है। और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई उस दिन के बाद चेंज, परिवर्तन। तब फिर 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात समझाते। अर्जुन अब यह सवाल पूछता है कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, ये सब मैं जानना चाहता। अब कहा ना, उसका सवाल बदल गया, अब उसके जिज्ञासा, पुरुषार्थ के प्रति मुझे क्या करना है। तो देह अभिमान अगर बीच में आता है तो वो देह अभिमान क्यों आता है, तो ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा क्या है, इसका मुझे स्पष्ट ज्ञान दीजिए। तो भगवान कहते ये शरीर क्षेत्र है, उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है, यही वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। ज्ञान इतना ही है, आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, बस इन तीन चीज को समझ लिया जिसने, यही ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। फिर भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, परिवर्तनशील जरूर है लेकिन उसका विनाश नहीं होता है, और पुरुष भी अनादि है, आत्मा का भी विनाश नहीं होता है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है, कोई भी बात का कारण और कार्य को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति के योग से जीवन व्यतीत होता है, जब यह शरीर और आत्मा का संबंध हुआ तब जीवन होता है। पुरुष प्रकृति के साथ मिलकर शरीर का भरण पोषण करता है, उसके साथ सुख दुख भोगता है और स्वयं को उसका स्वामी मानकर अधीन करके चलाता है, और कर्म अनुसार वह मानव देह को प्राप्त करता है। किस प्रकार का कर्म है, उस कर्म के अनुसार मानव देह को प्राप्त करता है। जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए कर्म की गुह्य गति को समझ लेता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहां प्रकृति का भाव जो भगवान ने लिया है वो है हमारी प्रकृति, सात्विक, राजसिक, तामसिक, के जो पुरुष और प्रकृति, यानी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके संयोग से जो कर्म करता है वो कर्म सात्विक होते, राजसिक होते, तामसिक होते, और जो इस गुह्य गति को समझ लेता है तो तामसिक प्रकृति से सात्विक प्रकृति की ओर आ जाता है और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। कितनी गहराई है एक एक वाक्य के अंदर गीता के। और फिर भगवान कहते आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, ये कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ लोग ज्ञान द्वारा, कुछ कर्म योग द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और जो उसकी विधि नहीं जानते वे लोग तत्वस्थित महापुरुषों द्वारा सुनकर आचरण करते। खुद जो नहीं कर पाता है तो कम से कम सुन करके उसका आचरण करते हैं। तो ये आत्म अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? तो कहा कुछ लोग ध्यान द्वारा उसका अनुभव करते, कुछ लोग ज्ञान द्वारा उसका अनुभव करते हैं, कुछ लोग कर्म योग द्वारा समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होते, जो कर्म करना है उसमें प्रवृत्त होते हैं। और फिर भी अगर नहीं मालूम पड़ा तो जो महापुरुष के द्वारा सुन करके उसके आचरण में आते, उसी से भी आत्म अनुभूति आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म करता है और सम दृष्टि रखकर व्यवहार करता है, ईश्वर को सर्वज्ञ जानता है, वह अपना शत्रु कभी नहीं बनता है और वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। इस विधि के माध्यम से ही वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। और फिर 14वें अध्याय में ये प्रकृति के तीन गुणों को स्पष्ट करते हैं अभी, क्योंकि जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात स्पष्ट हो गई, प्रकृति पुरुष की बात स्पष्ट हो गई, तो अब ये सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति क्या है, तो उसको भगवान को पूछते हैं। तो भगवान अब इसके बारे में गहराई से समझाते। भगवान कहते हैं इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति यानी दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सकता है, ज्ञान से ही सात्विक स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म अनंत शांति धाम है, मैं उसमें मैं गर्भ धारण करता। अब देखो इतनी गुह्य बात बताइए यहां पर कि उस महत ब्रह्म में परम धाम में भगवान गर्भ धारण करते। किस बात का गर्भ धारण करते हैं? अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प बीज को स्फुरित करता। यानी कहते हैं ना, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प आया तो ये गर्भ धारण किया उसने, और फिर प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। कई लोग हमें यह सवाल पूछते हैं कि भगवान को परम पिता क्यों कहा, परम माता क्यों नहीं कहा? है तो वो मात पिता, फिर परम पिता क्यों कहते हैं, गॉड फादर क्यों कहते हैं, गॉड मदर क्यों नहीं कहते? उसका जवाब भगवान देते हैं, क्योंकि मैं बीज को स्फुरित करने वाला हूं इसीलिए मैं पिता हूं, और प्रकृति को मदर अर्थ नेचर उसको माता कहा। चाहे नदी हो, नदी भी माता, और इसलिए सारी नदियों के नाम देखो भारत के अंदर माताओं के नाम से है। पृथ्वी को भी माता कहा, भारत माता कहा, ये धरनी को भी माता कहा, है ना। भावार्थ ये है कि प्रकृति इस गर्भ को धारण करने वाली माता हो गई और परमात्मा उस बीज को स्फुरित करने वाला पिता हो गया, इसलिए गॉड फादर है, परम पिता है और प्रकृति माता है। है वो दोनों ही, मात पिता दोनों ही है, पालना वही करता है। इसलिए पहले ही कह दिया मेरी कार्य प्रणाली कैसी है कि मैं सबका पालन करता जरूर हूं, लेकिन मेरी उनमें आसक्ति नहीं है, मोह माया नहीं, इसलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। फिर भगवान प्रकृति के तीन गुणों को स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रजो और तमो, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। सत्व गुण क्या होते हैं? तो कहा निर्मल, अभी उसकी पहचान कराते हैं। एक यार्डस्टिक दे देते हैं हमको अपने जीवन को देखने के लिए कि मुझ में कौन सी प्रकृति है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो उसकी विशेषताएं बताते हैं कि निर्मल यानी प्योर, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है, वो सात्विक प्रकृति है। रजोगुण किसको कहते हैं? जहां कामनाएं हैं, आसक्ति से उत्पन्न मानो, वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है, रजोगुण है। और तमोगुण क्या है? अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो आत्मा को आलस्य निद्रा और प्रमाद में बांधता है, वो तामसिक गुण है। जहां आलस्य, निद्रा, प्रमाद, अज्ञानता है, तो अपने आप को देख सकते हैं। शायद सात्विक और राजसिक के बीच में होंगे, तभी तो यहां बैठे ज्ञान को प्राप्त करने के, बुद्धि को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए तामसिक प्रकृति वाला तो यहां बैठ नहीं सकता है, है ना, वो तो भाग जाएगा, है ना। इसलिए यहां जो बैठे हैं सात्विक में जाने के प्रयत्नशील है, पुरुषार्थी है, और उसको स्पष्टीकरण करते हैं कि तमोगुण की बुद्धि कैसी होती है। तमोगुण की वृद्धि से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म भी पशु समान, पशु योनि में नहीं जाता है, पशु समान नरक समान जीवन होता है। यह तमोगुण की वृद्धि जब होती है तब की बात है। अच्छा, जब रजोगुण की वृद्धि होती है उसमें क्या विशेषता है, उसकी क्या निशानी है, कितना भगवान ज्ञान देता है, एक के बाद एक अर्जुन के वो सवालों का जवाब स्पष्ट करते। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति, स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ तथा अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है, ये चाहिए वो चाहिए उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति। रजोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनर्जन्म में जीवन बंधन का ही अनुभव करता है। और सत्व गुण क्या होते हैं, जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान के प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सत्वगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सत्वगुणी कर्म से अर्जित फल सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले की श्रेष्ठ गति होती है। तो तीनों की गति स्पष्ट कर दी है ना। इसलिए कहा यहां आना भी एक भाग्य है, जब आपका सात्विक गुण का उदय होता है तभी ऐसे माहौल में आने का एक सौभाग्य मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। आप लोगों में से ऐसे कई होंगे कि आपके साथ आने वाले और भी थे लेकिन लास्ट मोमेंट कोई काम आ गया, कैंसिल करना पड़ा। और आप में से कई ऐसे भी होंगे, आने वाले नहीं थे, किसी और की टिकट पर आ गए। क्योंकि जिसके वो सात्विक गुण का उदय होना है, हाँ, अस्पताल चले गए, हाँ कुछ लोग बीमार पड़ गए, ऐसा यहाँ आने वाले थे बीमार, आकर के बीमार पड़ गए। अच्छा, लेकिन वो कहानी मुझे याद आती है कि एक बार नारद जी जो थे ना, घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने पूछा भगवान से, भगवान क्या देख रहे हो? भगवान कहते ये मेरी खास डायरी है, स्पेशल डायरी है। तो इस खास डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा इसमें कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद कर, जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान भी मुस्कुराए, हाँ तेरा नाम तो सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा तो खुद का नाम पहला नंबर था, बड़ा खुश हुआ। आगे देखने लगा भगवान ने किस किस का नाम लिखा है जो उनको बहुत याद करते। ढूंढने लगे इसमें हनुमान जी का नाम कहां है, तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना डायरी, भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को, तो देखा हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। वहां जाने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा ये ढोंग सारा बंद करो। कहा क्यों? कहा भी मैं भगवान की खास डायरी देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भगवान को बहुत याद करते हैं, और आपका नाम तो डायरी में था ही नहीं। अब नारद जी की बातों को सुन करके हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे, कहने लगे मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद करता, मैं उसके दिल में रहता। नारद जी क्या कहते, फिर चले वहां से घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुंच गए तो देखा भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने भगवान को पूछा ये डायरी तो अलग लग रही है, ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहीं पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। इसमें किसके नाम लिखे है भगवान? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो नारद जी ने सोचा भगवान किसको याद करते हैं, देखे तो सही। तो कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और नारद जी का नाम ही नहीं था। भावार्थ ये कि दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत है, लेकिन भगवान जिसको याद करे, कोटों में कोई में भी कोई ऐसे भाग्यशाली आत्माएं आप हो। तो आप सबका नाम कौन सी डायरी में है पता है? पर्सनल डायरी में आपका नाम है ना? लेकिन अब यहां से जाकर के उन लोगों को ये नारद जी वाला काम नहीं करना कि जो यहां नहीं पहुंच पाए उनको कहो कि भाई भगवान का प्यार तो है ही नहीं तेरे साथ में। नहीं, उसको भी जाकर के ये बातें सुना करके उनका भाग्य भी ऐसे बनाए कि दूसरी बार की जब जूरिस्ट विंग की ये कॉन्फ्रेंस हो उसमें कम से कम वो पहुंच जाए। ये कार्य करेंगे ना आप तो इसको कहेंगे महान भाग्यशाली आत्माएं। तो इसलिए सात्विक गुण वाली आत्माएं जो होती है ना वो वही होती है जिसको भगवान याद करे, ऐसे महान भाग्यशाली आत्माएं हो। तो इसलिए कहा कि आप इतने भाग्यशाली हो, तामसिक गुण वाले नहीं है तो इसके लिए तो मुबारक। रजोगुण की कुछ बातें रह गई है लेकिन अब यहां ज्ञान सुन करके वो बातें भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। और सात्विक गुण यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश से अपनी कर्मेंद्रिय को प्रकाशित करो, उस प्रवाह को फैलाओ और सात्विक प्रकृति के बन जाए। और फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं, उसको स्पष्ट करो। तो भगवान कहते गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं, कोई कुछ भी कहे उससे विचलित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित रहे, निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख में संतुलित मनस्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है, कोई कुछ भी कहे अविचलित, विचलित नहीं हो जाता, दुखी नहीं हो जाता है, वह तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर हो जाता है, उसको कहा गुणातीत व्यक्ति है। और फिर भगवान से और एक सवाल किया कि किस विधि से गुणातीत बनते हैं। भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी माना एक की भक्ति, एक में अपने ध्यान को लगाना, व्यभिचार माना बहुतों को याद करना, अव्यभिचारी माना एक को याद करना। तो अव्यभिचारी भक्ति योग, भक्ति माना प्रेम, भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और परम सुख परम आनंद का आश्रय हूं। तो वो उस प्रवाह में आ जाते हैं, उस ओरा में आ जाते हैं, तो वो गुणातीत बन जाता है। और फिर पुरुषोत्तम योग परम 15वें अध्याय में भगवान बताते, अब यहां और गुह्य बातें बताते हैं भगवान कि यह सृष्टि कैसे कल्प वृक्ष है। तो यह संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत इनकी शाखाएं हैं। यह कल्प वृक्ष अविनाशी है परंतु नित्य परिवर्तनशील है। अविनाशी जरूर है लेकिन नित्य परिवर्तनशील है, जिसका बीज रूप परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता है क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसका बीज ऊपर और शाखाएं नीचे हो, तो इसीलिए लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि संसार एक वृक्ष कैसे है। तो इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों के ज्ञाता बन जाता है। उसको वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अब इस वृक्ष को और स्पष्ट करते हैं भगवान कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। नीचे थूर में आप देखेंगे सात्विक प्रकृति दिखाई है, बीच में राजसिक प्रकृति दिखाई है और अंत में तामसिक काला दिखाया, तामसिक प्रकृति दिखाई। गोल्डन जहां दिखाया है वो सात्विक प्रकृति है। फिर सिल्वर जहां दिखाया है, गोल्डन सिल्वर जो है सात्विक प्रकृति है। फिर कॉपर जिसको दिखाया है उसको राजसिक प्रकृति, और आयरन के जैसा काला दिखाया है वो तामसिक प्रकृति। थूर की तो ये बात है कि सत्युग त्रेतायुग ये सात्विक प्रकृति है, द्वापर युग ये राजसिक प्रकृति है, कलयुग ये तामसिक प्रकृति, वो बीच में आ गया। लेकिन जो उसकी टहनियां निकल रही है अलग अलग धर्म की टहनियां है, जैसे इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म भी ओरिजिनल सात्विक स्वरूप में था, फिर धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आ गया, राजसिक हो गया और अब तामसिक प्रकृति में चला गया। जब तामसिक प्रकृति में चले जाते हैं तो उसकी और ब्रांचेस निकल आती है। मानते एक को है लेकिन उसमें भी कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में अगर देखो, मानते सभी क्राइस्ट को है, तो पहले शुरू में वो धर्म सात्विक प्रकृति में रहा, फिर राजसिक प्रकृति में आया, और कलयुग के अंदर अभी इतने क्रिश्चियंस भी वैरायटी प्रकार के हो गए। कोई प्रोटेस्टेंट हो गए, कोई रोमन हो गए, कोई कैथलिक हो गए, कोई रोमन प्रोटेस्टेंट है, ये कोई रोमन कैथलिक है, इस प्रकार की उसमें भी अनेक टहनियां हो गई। तो इस प्रकार से हर धर्म, बौद्ध धर्म की भी यही हालत है ना, मुसलमान धर्म की भी यही हालत है, संन्यास धर्म की भी यही हालत है। आज भारत के अंदर भी जितने भी धर्म है, सन्यास धर्म को देख लीजिए, उसमें भी वही हालत है कि पहले सन्यास धर्म जो था, जैन धर्म जो था, ये सब सात्विक, लेकिन आज उसमें भी कितने प्रकार के लोग हो गए, सानकवासी, देरावासी, ये वासी, वो वासी, कितने हो गए, है ना। तो उसमें भी अभी तामसिकता आ गई। तो इस तरह ये वृक्ष को वृद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषयक है जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है। मैं उस आदि पुरुष, जब ये वृक्ष पूरा हो जाता है, एकदम कंप्लीट हो जाता है, तो आदि पुरुष के तन का आधार लेता। अब भगवान कैसे आते हैं वो बताते हैं कि मैं उस आदि पुरुष के तन का आधार लेता हूं जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रस्फुरित हुई है। वह आदि पुरुष वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमोगुण की मजबूत जड़ों को काटकर परम पद को प्राप्त करते। नर से सो नारायण पद को, परम पद वही है। नारी से सो श्री लक्ष्मी, तो वो परम पद है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ये परम पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, तो तमो गुण की जड़ों को काट देते हैं संसार में। कैसे काटते, ज्ञान के द्वारा काटते हैं। परिवर्तन जो आता है वो ज्ञान से आता है। और फिर भगवान कहता है मेरा वो परम धाम जिसे न सूर्य न चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकता है। फिर वापस अपनी अभिव्यक्ति के बारे में स्पष्टीकरण करता है कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हूं। इस पृथ्वी पर पांच भूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोम रस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। भगवान का कार्य क्या है कि संसार में जब आते हैं, परमात्मा ने बताया मैं सूर्य के समान हूं, चंद्रमा के समान शीतल और अग्नि के समान तेजोमय हूं, लेकिन जब इस पृथ्वी पर पांच तत्वों का शरीर का आधार लेकर आता हूं तो भगवान क्या करते हैं, सबको ज्ञान रूपी सोमरस को हजम करने की शक्ति देते। आप सबको मिल रही है ना वो शक्ति हजम करने की, नहीं तो इतनी ज्ञान की बातें को सुनना और हजम करना हा? कैसे हो रहा है? तो भगवान की शक्ति मिल रही है तभी तो हजम हो रहा है। जिसे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है, मैं ही सर्व आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं, और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्या धारणाएं, जो भी मिथ्या धारणाएं थी, दोषों की विस्मृति हो जाती है। मिथ्या धारणाएं और जो उनके दोष होते हैं उसको विस्मृत कर देता हूं। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान की स्मृति, इस कल्प वृक्ष की स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, दोषों की विस्मृति, तीनों ही होती है। भगवान से ही ये तीनों होती है। और फिर भगवान कहते हैं इस लोक में शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है, जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न रहती है, जो इस अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है वह मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है। उसे और संसार में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो गया, ज्ञान मिल गया, बस बहुत कुछ मिल गया, तो कृतार्थ हो जाता है। और फिर 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव क्या होता है, तीनों प्रकृति के गुण तो बताए लेकिन साथ में दैवी स्वभाव आसुरी स्वभाव क्या होता है उसको स्पष्ट करते कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण क्या होते हैं। अभय, शुद्ध अंतकरण, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ यानी जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्तता, त्याग, शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता, विनयशीलता, दृढ़ संकल्पतारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ये हैं आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इस एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण। और दूसरी ओर आसुरी प्रवृत्ति वाले कौन होते हैं? असुर माना सचमुच कोई बड़े बड़े सिंगों वाले दांतों वाले मनुष्य इस संसार में नहीं होते हैं, लेकिन जिसकी मनोवृत्तियों में, प्रवृत्ति में आसुरी पना है, उसका गुण स्पष्ट करते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में यह संसार मिथ्या है, निराधार है और ईश्वर रहित है। वे यही मानते हैं कि यह संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है, विषय उपभोग के ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और उनके सिवा इस संसार में अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त अशुद्ध संकल्प वाले मोहग्रस्त दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले मंद बुद्धि अपकारी क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्यता पाई जाती है। ये आसुरी लक्षण वाले हैं। और आगे उसके लक्षणों को वर्णन करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर विषय उपभोग की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्व संपन्न उपभोगी सिद्ध पुरुष बलवान और सुखी है। वे सोचते हैं कि उन जैसा धनवान कोई नहीं, वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, यही मानते हैं। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम मान और शान के लिए यज्ञ और दान भी करते हैं। यज्ञ भी किस लिए करते, दान भी किस लिए करते, अपने ही नाम मान शान के लिए। अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे विषय उपभोग के आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीने वाले अहंकार बल पाखंड कामी और क्रोधी सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्य आत्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बारंबार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहते हैं। ये उनके लक्षण स्पष्ट किए और फिर बताया भगवान ने कि इस नरक के तीन द्वार हैं। इस नरक में जाने के तीन द्वार हैं, कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। विधि विधान को ज्ञान युक्त होकर के समझना चाहिए, जानना चाहिए और कर्म करना चाहिए, उसको कहेंगे समझदार। फिर श्रद्धा का विभोग, तो 17वां 18वां अध्याय जो है आगे देखेंगे, और एक सेशन है अपना, तो उसमें 17वां 18वां अध्याय जो है उसको देखेंगे कि जिसमें भगवान ने बहुत सुंदर बातें कही है। लेकिन अब हम सभी ध्यान में बैठेंगे, अभ्यास करना है, अभ्यास से ज्ञान ध्यान श्रेष्ठ है, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और जैसे हम आपको विचार देते जाए, परमात्मा से वो शक्ति को प्राप्त करना है, स्वयं को यही समझना है कि चलो कितने भाग्यशाली है हम जो यहां पर पहुंच गए, ईश्वर के सानिध्य में पहुंचे हैं और उस परमात्मा से शक्ति को प्राप्त करना है। आज सुबह अमृत वेले उठे थे आप सभी, आए थे यहां पर योग करने के लिए, अच्छा लगा कि नींद आई थी और सारा दिन फिर उसका इफेक्ट रहा कि भाई जल्दी उठते तो नींद आती है, ये रहा कि नहीं इतना ही फ्रेश है अभी शाम तक, फ्रेश है ना सभी? तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे और कल का सुबह का भी आप अमृत वेले आएंगे ना, हाँ जरूर। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठते हैं ईश्वर के याद में। और जैसे मैंने सुबह भी कहा कि मन को घूमना अच्छा लगता है, ये नमः शाम के समय हम उसको कहां ले चलेंगे? घूमने ले चलेंगे ईश्वर के पास में, ईश्वर के सानिध्य में, जहां उसको आनंद मिलता है, जहां से वो सोमरस प्राप्त करते हैं, हजम करने की शक्ति प्राप्त होती है और आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, सशक्त करेंगे। तो कुछ क्षणों के लिए ध्यान के समय मन और शरीर दोनों की एकाग्रता होनी चाहिए। स्वस्थ होकर के बैठे, एकदम सीधा, पीठ सीधी हो, अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रकुटी की मध्य में एक ज्योति पुंज के रूप में। ये शरीर मेरा मंदिर है, इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं। मन बुद्धि संस्कार के वे अधिकारी, नमः शाम के समय चलते हैं एक यात्रा पर, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार, परम धाम में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। अंतर चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। अपने अनादि सतो गुण स्वरूप में हूं। मैं आत्मा सतो गुणी स्वरूप हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैला हुआ है। उस प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना सुंदर स्वरूप है ये मेरा। आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति के वाइब्रेशन मेरे चारों ओर फैले हुए हैं। इस शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है, इस शांति में परमानंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। ये सतो गुण इंद्रधनुष के सप्त रंगों के आभा मंडल को विकसित करता है। इंद्रधनुष के सप्त रंगों के प्रभा मंडल में मेरे सत्व गुण का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। ये प्रभा मंडल एक सुंदर कवच है। जिसमें मैं अपनी सात्विक प्रकृति को विकसित करती हूं। ये सत्व गुण मेरी बुद्धि को निर्मल करती जा रही है। जिसमें ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। धीरे धीरे मैं स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी सूक्ष्म ते सूक्ष्म नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप है। जो सूर्य के समान तेजो मैं है। चंद्रमा के समान शीतल प्रकाशमान है। परम सत्य स्वरूप है, परम पवित्र स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है, जिनका असीम ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, इस संसार में परमात्मा जैसी अभिव्यक्ति किसी की नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उस दिव्य स्वरूप पर मैं अपने ध्यान को एकाग्र करती हूं। और परमात्मा से सर्व शक्तियों के किरणों को स्वयं में समाती जाती, परमात्मा से सर्व समर्थी मैं स्वयं में प्राप्त कर रही हूं। परमात्मा परम पूजनीय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु है। परमात्मा शक्ति से धीरे धीरे मेरे मन का मैल साफ होता जा रहा है। और मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है। बुद्धि निर्मल होती जा रही है। संस्कारों में दिव्यता समाती जा रही है। कितना सुंदर अनुभव है ये। पिता परमात्मा भाग्य विधाता है, Thank you. और हृदय में अनन्य भाव को लेकर मैं उस भाग्य विधाता के शरण ग्रहण करती हूं। मेरा मोह और अज्ञान दूर हो रहा है। ज्ञान के प्रकाश से मेरी बुद्धि की प्रभा चमकने लगी है। परमात्मा पिता नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते जाते हैं। मैं स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करती जा रही हूं। कितनी न सौभाग्यशाली हूं जो परमात्मा के असीम कृपा की पात्र आत्मा बनती जा रही हूं। परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा के ज्ञान के दिव्य चक्षु खोल दिए। दिव्य चक्षु का वरदान दिया है। जिस दिव्य चक्षु से मैं परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। मन का सारा बोझ समाप्त होता जा रहा है। मन हल्का अनुभव कर रहा है। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। परमात्मा से सामर्थ्य को प्राप्त करते मैं आत्मा समर्थ स्वरूप बनती जा रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति के मध्य में स्थित करती हूं। ये शरीर मेरा कर्म करने का क्षेत्र है। सर्व कर्मेंद्रिय पर अधिकार प्राप्त कर इस कर्म क्षेत्र में ज्ञान युक्त कर्म करने हैं। परमात्मा शक्ति को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूं। और अपने संबंधों में, कर्म में, व्यवहार में परमात्मा शक्ति को प्रवाहित करते जाना है। किससे व्यवहार कुशलता संबंधों में मधुरता और सही रूप से कर्मयोगी जीवन बना सकूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज हमने 16 अध्याय तक ये गीता की बातें सुनी और आगे फिर एक सत्र है, तो उसमें 17वां 18वां अध्याय जो बहुत गहराई वाला है उसको समझेंगे।